नमस्कार श्रोताओं, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमेशा की तरह आपका अपना प्रिय बाइबल अध्ययन लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आशा करते हैं कि आप सब भी आज के इस बाइबल अध्ययन में सम्मिलित होने के लिए तैयार हैं। इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से इब्रानियों नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको लाभ मिल रहा है। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर गीत।
तू है मसीह प्यार का, तेरा प्यार मुझ में हो। सत्य तू प्रभु, तेरी सच्चाई मुझ में हो। तू है मसीह प्यार का, तेरा प्यार मुझ में हो। सत्य तू प्रभु, तेरी सच्चाई मुझ में हो। यीशु तेरी रूह से मुझे भर दे प्रभु, यीशु तेरी रूह से मुझे भर दे प्रभु। तू आशीष मुझको दे प्रभु, तू आशीष मुझको दे प्रभु, तू आशीष मुझको दे प्रभु, तू आशीष मुझको दे प्रभु। तेरा प्रकाश मुझ में हो प्रभु, तेरा ही तेज मुझ में हो प्रभु, तेरा प्रकाश मुझ में हो प्रभु, तेरा ही तेज मुझ में हो प्रभु।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूं और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रहते हुए कुशल पूर्वक हैं और आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और अपने उन सभी नए मित्रों का जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, और मैं उन सभी मित्रों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं जो हमारे इस कार्यक्रम को सुनकर अपनी गवाहियां हम तक पहुंचाते हैं। और मैं आशा करता हूं कि आप सब भी इस कार्यक्रम के द्वारा अपने जीवन में आत्मिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं। मित्रों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम सब इन दिनों बाइबल में से इब्रानियों की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं और पिछले अध्ययन में हम सब देख रहे थे कि विश्वास की एक दौड़ है जिसमें हम हर एक विश्वासी दौड़ रहे हैं। तो इससे पहले कि आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें, आइए हम सब प्रार्थना करें और आज के अध्ययन के लिए परमेश्वर से सहायता मांगें। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में फिर से दिया है ताकि हम आपके जीवित और सच्चे वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हम आपके वचन में से सीखना चाहते हैं, हमारी प्रार्थना है कि हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को आप अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें ताकि जब हम आपके वचन का अध्ययन करें, मनन चिंतन करें, तो आपका वचन प्रत्येक के जीवन से बोलने और बातचीत करने पाए। विशेष करके हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए है जो इस समय बीमार हैं, निराश और परेशान हैं, चिंता और दबाव में हैं। पिताजी, आप उनकी सहायता करें, उनके जीवन से बातचीत करें, ताकि वे जाने पाएं कि आप उनसे प्रेम करते हैं, आप उनकी चिंता करते हैं, आप उनकी सहायता करना चाहते हैं, वे आप पर विश्वास करने पाएं। आज के वचन के द्वारा हम सबों को आप आशीषित करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि हम इन दिनों इब्रानियों के पत्री से अध्ययन कर रहे हैं, और इसमें हम सब देख रहे हैं कि एक विश्वासी का दौड़। जी हाँ, विश्वासी एक दौड़ प्रतियोगिता में सहभागी है और उन्हें दौड़ना है। वे इस दौड़ को तभी जीत सकते हैं जब उलझाने वाली और रोकने वाली बातों से मुक्त रहें। इस दौड़ में हमें प्रोत्साहित करने के लिए पुराने नियम के विश्वासियों की गवाही का बड़ा बादल हमें घेरे हुए है। हमें अपने प्रभु यीशु की ओर निहारते रहना है। यदि आप परमेश्वर के वचन के निकट रहें, तो पवित्र आत्मा प्रभु की बातें लेकर हमारे जीवन को सार्थक बनाएगा। अन्यथा हम निराश होकर साहस छोड़ देंगे और इस सांसारिक जीवन से ऊब जाएंगे। तो आइए हम आगे बढ़ेंगे और पढ़ते हैं इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय उसका 4 पद। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय उसके 4 पद में लिखा है, तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो। मेरे प्रियो, यहां पर ध्यान दीजिए। इससे स्पष्ट होता है कि इस समय यरूशलेम का मंदिर नष्ट नहीं हुआ था। रोम का सताव अभी विश्वासियों पर नहीं आया था। लिखा है कि तुम्हारा लहू बहा हो। वह विश्वासियों से कहता है, यद्यपि तुम कठिन समय में हो, परेशानियों और कष्टों का सामना कर रहे हो, तुम्हारे निरुत्साह, दुर्बलता, लड़खड़ाने, विफलता, ठोकर खाने और निराशा इसलिए है कि प्रभु यीशु की ओर ध्यान लगाओ। जी हाँ, आज परमेश्वर चाहता है कि हम अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाएं। इब्रानियों के पत्री 12 अध्याय के 5 पद में लिखा है, और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान, और जब वह तुझे घुड़के तो साहस न छोड़। लेखक नीति वचन की पुस्तक 3 अध्याय उसके 11 और 12 पद का संदर्भ दे रहा है। लिखा है, हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह न मोड़ना, और जब वह तुझे डांटे तब तू बुरा न मानना, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे बाप अपने बेटे को डांटता है। जी हाँ, जैसे बाप उस बेटे को जिसे वह अधिक चाहता है। उनका एकमात्र संसाधन प्रभु यीशु था, मंदिर नहीं, विधि विधान नहीं, और न ही धर्म। इस समय वे एक प्रकार से जाति बाहर थे। अतः लेखक कहता है कि वे परमेश्वर के इस प्रबोधन को न भूलें जो उसकी संतान के लिए है। पद 5-8 में पुत्र शब्द 6 बार काम में लिया गया है। यूनानी भाषा में जो शब्द आया है वह एक विकसित पुत्र के लिए काम में लिया जाता है। आज अनेक धर्मी जन नहीं चाहते कि उन्हें अनुशासन में रखा जाए। मेरे मित्रों, सच तो यह है कि अनुशासन शब्द परिपक्व विश्वासियों के लिए है जो परमेश्वर की संगति में लंबे समय से चल रहे हैं। अतः अनुशासन परिपक्व भक्तों के लिए होता है। मैं भी कभी ऐसे स्थान में था कि अनुशासन की आवश्यकता नहीं समझता था, परंतु परमेश्वर ने मुझे चित कर दिया कि मुझे समझ में आ जाए कि मुझे अधिक अनुशासन की आवश्यकता है। आगे हम पढ़ते हैं जहां पर शब्द आया है डांटना। डांटना का अर्थ वह नहीं जो हम समझते हैं। यूनानी भाषा में इसका अर्थ है शिशु प्रशिक्षण। परमेश्वर अपने पुत्रों को प्रशिक्षण देता है, उनको अनुशासन सिखाता है, जिस प्रकार हम अपने बच्चों को छोटे से ही अनुशासन सिखाते हैं। इब्रानियों के पत्री 12 अध्याय उसके 6-8 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ वर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई, तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। मेरे मित्रों, एक अति प्रासंगिक प्रश्न है, धर्मी जन कष्ट क्यों उठाता है? मैं अपने रोग के समय परमेश्वर से प्राप्त शिक्षा आपको देना चाहता हूं। यह मेरा भी एक अनुभव है। भजन संहिता 34 उसके 19 पद में लिखा है, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उन सब को उनसे मुक्त करता है। अय्यूब की पुस्तक 5:7 पद में लिखा है, जैसे चिंगारियां ऊपर ही ऊपर को उड़ जाती हैं, वैसे ही मनुष्य कष्ट भोगने के लिए उत्पन्न हुआ है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 उसके 33 पद में प्रभु यीशु कहता है, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। दूसरा तीमुथियुस की पत्री 3 उसके 12 पद में पौलुस कहता है कि मसीह यीशु में भक्ति का जीवन जीने वाले क्लेश भोगेंगे, अर्थात कष्ट उठाएंगे। परमेश्वर के जन कष्ट क्यों भोगते हैं? मैंने धर्मशास्त्र से इसके 7 कारण खोजे हैं। पहला, हमारी अपनी मूर्खता और पाप। पहला पत्रस की पत्री 2:20 पद लिखा है, यदि तुमने अपराध करके घूंसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है। यहां अपराध का अर्थ है लक्ष्य से चूकने के कारण। पत्रस कहता है कि अपनी मूर्खता के कारण कष्ट उठाएं तो उसका कोई महत्व नहीं है। मेरे मित्रों, कुछ लोग व्यापार में पैसा निवेश करके लुट जाते हैं। मैं एक ऐसे मनुष्य को जानता हूं, वह आज कंगाल है। यह मूर्खता से उत्पन्न दुख है। एक बार एक व्यक्ति ने मुझे बताया कि वह कार्यालय में देर तक कार्य करने के कारण समय पर घर पहुंचने में सामर्थ नहीं हुआ। उसने अपनी पत्नी को तो सूचना दे दी थी, परंतु क्योंकि वहां एक और सहस्र महिला सहकर्मी महिला देर तक उसके साथ काम कर रही थी, वे दोनों साथ भोजन करने एक होटल में चले गए। वहां किसी धूर्त ने उन्हें देखा और उसकी पत्नी को फोन कर दिया। हुआ तो कुछ भी नहीं, परंतु इस चूक से अनर्थ हो सकता था। अनेक विश्वासी मूर्खता की कीमत चुका रहे हैं। दूसरा कारण है सत्य और धार्मिकता के लिए खड़े होने के परिणाम स्वरूप भी हम कष्ट उठाते हैं। जी हां, यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कितने लोग इसके गवाह हैं। पहला पत्रस की पत्री 3:14 पद में लिखा है, यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो। परंतु हम यहां भी भ्रम और मूर्खता का शिकार होते हैं। एक बार एक मनुष्य आकर मुझसे शिकायत करने लगा कि उसके कार्यालय में सब उसके बैरी हैं। उसके वरिष्ठ अधिकारी ने मुझे बताया कि उसका स्वभाव किसी को पसंद नहीं, क्योंकि वह सबको उपदेश सुनाता है। काम के समय भी वह अपनी गवाही देकर सबके काम में बाधा उत्पन्न करता है। यहां उसके कष्ट का कारण सत्य और धार्मिकता के लिए उसका खड़ा होना नहीं है। हम में से कई विश्वासी ऐसा ही करते हैं, काम के समय अपनी गवाही देते हैं और यही कारण है कि वे कष्ट उठाते हैं। तीसरा कारण हम देखते हैं, हमारे जीवन में पाप कष्ट लाता है। पहला कुरिन्थियों की पत्री 11 अध्याय उसके 31 पद में लिखा है, यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। यदि हम परमेश्वर की संतान होने के बाद भी पाप से अलग होना नहीं चाहते तो परमेश्वर उसे दूर करता है, वह हमारा न्याय करता है। और हमारे जीवन में पाप का कष्ट यही है। और चौथा कारण है अपने पूर्व के पापों का कष्ट। गलातियों की पत्री 6 अध्याय उसके 7 पद में लिखा है, धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। मेरे मित्रों, हम लोग एक बार एक मशहूर प्रचारक के साथ एक स्थान पर पानी पीने के लिए गए। सबने कुछ कुछ लिया, परंतु उन्होंने केवल सादा पानी पिया। कुछ लोग उनसे मजाक में छेड़छाड़ करने लगे। उन्होंने कहा, प्रभु ने मुझे नया मन तो दिया परंतु नया पेट नहीं दिया। शराब पीने के कारण उनका पेट क्षतिग्रस्त हो गया था और उनके लिए कष्ट का कारण था। पांचवी कारण को देखते हैं हम लोग, परमेश्वर का अव्यक्त उद्देश्य। जैसा हम अय्यूब के बारे में देखते हैं, परमेश्वर शैतान को, संसार को और स्वर्ग दूतों को दिखाना चाहता था कि वह स्वार्थ परायण परमेश्वर भक्त नहीं है। वह परमेश्वर के कारण ही उससे प्रेम रखता था। और अब हम छठवें कारण को देखते हैं, विश्वासियों को विश्वास के कारण कष्ट होता है। जैसा इस अध्याय के पद 11 में लिखा है, कुछ को विश्वास के कारण जय प्राप्त हुई तो कुछ विश्वास के कारण तलवार की धार से बचे, परंतु कुछ तलवार से घात किए गए। फ्रांस के प्रोटेस्टेंट विश्वासी जानते थे कि वे युद्ध में मारे जाएंगे, परंतु फिर भी वे युद्ध में गए और उनका नारा था, यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। उन्होंने विश्वास के कारण दुख उठाया। और अब हम सातवें कारण को देखते हैं, अनुशासन के द्वारा कष्ट उठाना। यहां पद 6 में यही लिखा है, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसको पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। लेखक के कहने का अर्थ है कि वह बाल प्रशिक्षण देता है, दंड नहीं देता है। जी हां, दंड देना न्यायाधीश का काम है। पिता का काम है प्रेम करना और प्रेम के कारण अनुशासित करना। यदि परमेश्वर आपकी ताड़ना नहीं करता है तो आप अवैध संतान हैं। लोग कहते हैं, परमेश्वर ने मेरे साथ ऐसा होने दिया तो इसका अर्थ है कि मैं उसकी संतान नहीं। मेरे मित्रों, सच तो यह है कि आपके कष्ट सिद्ध करते हैं कि आप परमेश्वर की संतान हैं। यदि आप समझदार विश्वासी हैं तो आप कष्ट के समय पिता के पास जाकर बात करेंगे और वह आपके कष्ट का कारण आपको अवश्य बताएगा। वह शायद आपको दंड दे रहा है, परंतु वह हमारा प्रेमी स्वर्गीय पिता है जो अपनी संतान को अनुशासन में रखता है। मेरे श्रोता मित्रों, यदि आप इस वचन को सुन रहे हैं तो निश्चय जानिए कि परमेश्वर आपके जीवन को चाहता है, क्योंकि वह आपसे प्रेम करता है। एक बार मैं अपने स्कूल के साथियों के साथ समस्या में पड़ गया। मेरे पिता स्कूल आए और सैकड़ों विद्यार्थियों के बीच से होकर आगे बढ़ने लगे। आप जानते हैं वह किसके पीछे जा रहे थे? वह अपने पुत्र को खोज रहे थे और उन्होंने उसे घर ले जाकर उसको अनुशासन सिखाया। उन्होंने अन्य अनेक बच्चों को अनुशासन नहीं सिखाया, क्योंकि वे उनकी संतान नहीं थे। मेरा पिता मुझे अनुशासित करता है और करता था, क्योंकि वह जानता है कि मैं उसका बेटा हूं, उसका पुत्र हूं, और वह चाहता है कि मैं भला कार्य करूं ना कि बुरा। मेरे प्रियो, अनुशासित जीवन हमारे जीवन को परमेश्वर की निकटता में लाता है। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय उसके 9 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन न रहें जिससे हम जीवित रहें। मैंने अपने पिता के निर्देशों का पालन किया क्योंकि मैं नए मनोवैज्ञानिक विचार को नहीं जानता था कि आपको माता पिता की बातों पर ध्यान नहीं देना है और माता पिता को बच्चों को अनुशासित करना उचित नहीं है। मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना। इब्रानियों की पत्री का लेखक कहता है, हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना करते थे और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन न रहें जिससे हम जीवित रहें। जी हाँ, अब आप अपने सांसारिक पिता की बात माने या ना माने, स्वर्गीय पिता की बात माने तो अच्छा होगा। लेखक यह सुझाव बहुत अच्छी तरीके से देता है, आत्माओं के पिता के अधीन रहें कि जीवित रह पाएं, अर्थात पूर्णता का मसीही जीवन जिएं। यह व्यवहारिक पक्ष है, इसका एक नकारात्मक पक्ष है, स्वर्गीय पिता का व्यवहार कभी कभी अत्यधिक कठोर होता है और एक पाप ऐसा है जो मृत्यु लाता है। मृत्यु लाने वाला पाप वह है जिसके द्वारा पिता का अपमान होता है और वह अपनी संतान को इस संसार से उठा लेता है। लेखक कहता है कि स्वर्गीय पिता की बात मानना ही उत्तम है क्योंकि वह प्रेम के कारण आपको अनुशासन में रखता है, परंतु यदि आप पाप में ही रहना चाहें तो वह आपको यहां नहीं रहने देगा। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय के 10 पद में लिखा हुआ है, वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर वह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। मेरे मित्रों, कभी कभी मेरे सांसारिक पिता ने मुझ पर अपना क्रोध उगला, परंतु वह मेरे लाभ के लिए था, यह तो निश्चित है। इसी प्रकार मेरा स्वर्गीय पिता भी मेरे लाभ के लिए मुझे अनुशासन में रखता है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। मेरे विचार में परमेश्वर के अनुशासन के बिना आप परमेश्वर के पूर्ण विकसित पुत्र नहीं हो सकते कि उसकी सहभागिता में रहें। पवित्रता का आशय यही है। एक पिता ने अपने पुत्र की ताड़ना की और उससे कहा, इससे मुझे तुमसे अधिक दुख होता है। पुत्र ने कहा, पापा, दर्द तो होता है परंतु वहां नहीं जहां मुझे दर्द होता है। परमेश्वर को अपने संतान की ताड़ना करने में आनंद नहीं मिलता, वह तो इसलिए ताड़ना करता है कि यह हमारे लिए आवश्यक है। ताड़ना करना खुशी की नहीं दुख की बात होती है, क्योंकि यह मेरा भी अनुभव रहा है। मेरे प्रियो, यद्यपि ताड़ना हर्ष का कारण तो नहीं है, परंतु ताड़ना पाने वाले में वह धार्मिकता के शांतिदायक फल लाती है। परमेश्वर निरुद्देश्य उसकी ताड़ना नहीं करता है, वह आपकी भी ताड़ना नहीं करता है। वह चाहता है कि आप उसके प्रेम में, उसके डर में, उसकी निकटता में अपने जीवन को जिएं। एक बार मानसिक चिकित्सालय में एक पुरुष डंडे से अपना सिर पीट रहा था कि वहां उपस्थित एक आगंतुक ने उससे पूछा, आप अपना सिर क्यों फोड़ना चाहते हैं? उसने कहा, क्योंकि जब मैं सिर पीटना बंद कर दूंगा तब मुझे बहुत अच्छा लगेगा। परमेश्वर आपकी ताड़ना इसलिए नहीं करना चाहता है कि जब वह रुके तो आपको अच्छा लगे। वह आपको रोगग्रस्त इसलिए नहीं करता है कि चंगे हो जाने पर स्वास्थ्य लाभ का आनंद लें। परमेश्वर का अनुशासन उद्देश्य के अधीन होता है ताकि प्रत्येक विश्वासी उसकी निकटता में अपना जीवन व्यतीत कर सके। मेरे मित्रों, यदि आप इस समय बीमार अवस्था में हैं, यदि आप निराश और तनाव में हैं। मैं नहीं जानता कि ऐसा क्यों है, परंतु आज के वचन के प्रकाशन में परमेश्वर कहता है कि वह मुझसे और आपसे प्रेम करता है। और यहाँ पर हमने 7 कारणों को देखा कि किस कारण से हम कष्ट उठाते हैं। यदि पाप के कारण है तो आज मौका है कि आप परमेश्वर के पास आएं और अपने पापों के लिए क्षमा प्राप्त करें, उससे क्षमा याचना करें और निश्चय जानें कि वह आपको क्षमा करेगा। इतना ही नहीं, यदि आप परमेश्वर के निकटता में भले और अच्छे जीवन जी रहे हैं तो निश्चय जाने कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। वह आपको विश्वास में और दृढ़ और मजबूत करना चाहता है। आपको चंगाई और छुटकारा अवश्य वह देगा। क्यों ना हम उस महान परमेश्वर की ओर अपनी नजरों को उठाएं और उससे कहें कि प्रभु मुझे धैर्य दे, हिम्मत दे, ताकि मैं आप में बढ़ सकूं, आपके विश्वास के लिए स्थिर रह सकूं। जी हां, आज परमेश्वर आपसे यही करना चाहता है। मेरे प्रियो, यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मुझे आशा है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको बहुताय से आशीष दे और आप सबकी सहायता करे।
प्रिय श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।